सरहदों की ये जो लकीरें हैं, ये तमाम लोगों को जो है वो इसकी तरफ बढ़ना चाहिए, आलमी रियासत की तरफ। अगर आपकी ये बात है कि आलमी रियासत की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, तो जो पाकिस्तान वजूद में आया दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर, हमने एक जो बहुत बड़ी रियासत थी उसको तकसीम किया और तकसीम करके हमने अपने लिए खित्ता अर्ज अलग लिया। आप आलमी रियासत की तरफ दोबारा जाना चाहते हैं, तो आप तो उस पूरे दो कौमी नज़रिए के प्रोसेस को अंडू करना चाह रहे हैं और आप उसे रिवर्स लेके जाना चाह रहे हैं, क्या ये बात ठीक है?
मैं जब आलमी रियासत की बात करता हूँ तो उसका मतलब आपकी कौमी रियासतों की नफ़ी नहीं है।
तो फिर आलमी रियासत मतलब में कोई ना कोई तो होगा ना, कोई एक हुक्मरान बनेगा उसका, फिर
क्या हर्ज की बात है इसमें? तो यानी इस वक्त आप सब अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन हैं, इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के अहकाम आप पर लागू होते हैं
और उसका एक ही चौधरी है, उस अक़वाम मुत्तहिदा का एक ही है ना जो चौधरी है?
नहीं, वैसे तो पांच है जिनको वीटो का हक वहां आपने दे रखा
है। काउंसिल
वो तो दूसरी जगह अजीम
है, वही है ना, वो अंडू हो जाए। हमारा जो दो कौमी नजरिया जिसकी बिना पर हम अलग हुए थे, वो तो फिर हम दोबारा उसी।
देखिए, दो कौमी नजरिया क्या चीज़ है? असल में हिंदुस्तान में एक सियासी मसला पैदा हुआ। वो सियासी मसला ये था कि कौमी रियासत का तसव्वुर भी पैदा हो गया और जमहूरी उसूलों पर हुकूमत कायम करने का कायदा भी आपने तस्लीम कर लिया। ये दोनों चीज़ें तारीखी अमल के नतीजे में हो चुकी थी
जी।
मैं ज़रा आपको थोड़ा सा पीछे ले जाके बताता हूँ। अंग्रेज़ जब यहाँ आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहाँ आने के बाद दो काम किए। एक ये कि हिंदुस्तान में बहुत सी रियासतें थी, यानी सैकड़ों की तादाद में रियासतें थी। निज़ाम हैदराबाद, नवाब भोपाल, ये तो आपने सुन रखे होंगे, तो सैकड़ों की तादाद में रियासतें थी। इन तमाम रियासतों को उन्होंने असल कायम रखा,
ठीक है,
यानी इन्हीं के हुक्मरान रहे और उन हुक्मरानों के ज़रिए से वो ऊपर बैठकर हुकूमत करते रहे। उनका इरादा हिंदुस्तान की मुग़ल हुकूमत को भी ख़त्म करने का नहीं था। बहादुर शाह ज़फ़र ही को वो हुक्मरान की हैसियत से, एक आइनी हुक्मरान की हैसियत से बाकी रख कर निज़ाम चलाना चाहते थे। उनके माहदात हो गए उनके साथ, बल्कि आपके इलम में होगा कि दोनों शहजादों में से एक का इंतखाब कर लिया गया था ऑक्सफर्ड में पढ़ाने के लिए। वो ये चाहते थे कि जैसे बरतानिया में उनका नज़म है उसी तरह कायम रखें। अगर ये चीज़ रहती और जो जंग आज़ादी जिसको आप कहते हैं वो गदर कहते हैं वो वाकया ना होता, तो गालिबन यही सूरत हाल होती जिस दिन वो यहाँ से जाते। मुसलमानों की नफ्सियाती तस्कीन हो जाती कि बादशाह उनका और वज़ीर आज़म हिंदुओं में से मुंतखब हो गया है। इस नफ्सियाती तस्कीन का जंग आज़ादी ने या गदर कहिए जो भी था उनके इस्तेलाह में उसने खात्मा कर दिया। जब ये ख़त्म हो गया तो अब एक सवाल पैदा हुआ, वो असल में मुसलमानों की कौमी शनाख्त का सवाल था। कायदे आज़म की बाज़ तकरीरें हैं जिनको आप पढ़िए तो वो बड़े ज़ोर के साथ जब अपना इस्तदलाल बयान करते हैं और बहुत सी बातें कहने के बाद आखिरी बात ये कहते हैं, मुसलमान अपनी हज़ार साल तारीख के पस मंज़र में हिंदुओं की अक्सरियत के निहाब को कबूल नहीं करेंगे। ये जो उनके अल्फाज हैं ये बता रहे हैं कि जमहूरी तौर पर जब नज़म हुकूमत कायम होना है, एक कौमी रियासत है ना, हिंदुस्तान एक कौमी रियासत की सूरत इख्तियार कर रहा था और उसमें जमहूरी उसूलों पर हुक्मरान मुंतखब होंगे, तो वो ये महसूस करते थे कि मुसलमानों की जो नफ्सियात है ये इस सूरत हाल को कबूल नहीं करेगी। उसमें एक सियासी हल पेश किया गया कि जिधर मुसलमानों की अक्सरियत है वो अपनी एक कौमी रियासत बना लें, जिधर हिंदुओं की अक्सरियत है वो अपनी एक कौमी रियासत बना लें। वो कौमी रियासत बनाई गई माजरत के साथ, नेशन स्टेट,
ठीक है।
और जिस दिन वो रियासत वजूद में आ गई, आप हैरान नहीं होते, यानी 14 अगस्त की रात को जैसे ही पाकिस्तान वजूद में आया तो अगले दिन जो यहाँ रहने वाला हिंदू था वो कौन था? पाकिस्तानी था या नहीं था?
पाकिस्तानी था।
यानी आप कह रहे
दो कौमी नज़रिए की हकीकत है,
यानी आप कह रहे हैं कि नज़रियाती लकीरें जो हैं वो कायम रहें, आलमी रियासत जो है उसका नज़रियाती लकीरों से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बेशक कायम,
वो हमेशा रहेंगे,
वो हमेशा रहेंगे,
यानी वो फितरी हैं। देखिए, बहुत सी जगहों के ऊपर ये मौजू होगा कि आप नस्ली बुनियाद पर एक रियासत को वजूद में आने दें। बहुत सी जगहों पर मौजू होगा, मसलन मैं मलेशिया में रहता हूँ, उसमें 3 अकवाम हैं, यानी एक मले है, वो 55-56% के करीब वो हैं, 25-30% के करीब चीनी हैं। ये लोग 200-300 साल में वहाँ आके आबाद होना शुरू हुए हैं। 8-10% के करीब तामिल या हिंदू हैं जो जनूबी हिंद से वहाँ ले जाए गए। अंग्रेज़ों ने जब वहाँ कानकनी शुरू की तो उसमें उनको मज़दूरों की ज़रूरत थी, ज़्यादातर चीन से लाए। उनको बंदरगाहों से सामान उठाने की ज़रूरत थी, ज़्यादातर जनूबी हिंद से लाए। उसके नतीजे में आबादी में यह तनवो पैदा हो गया
जी।
अच्छा, उसके अपने कुछ मसाइल हैं, वो मौजूद रहते हैं। अब जब 3 नौइयत की यह अकवाम है तो इसमें वतन की बुनियाद पर कौमी रियासत ही बन सकती है, वही वजूद में आई। किसी जगह मुमकिन है कि ये हो कि आप किसी नस्ल की बुनियाद पर बनने दें। अमेरिका में इस वक्त जो रियासतें हैं उनके अपने कवानीन हैं, उनमें बाज़ मामलात में उनको कानून साजी की, मुख्तलिफ कानून साजी की इजाज़त है
जी।
तो इस वजह से आलमी रियासत का मतलब ये नहीं है कि कौमी शनाख्तें ख़त्म हो जाएंगी।
बिल्कुल सही।
उसका मतलब यह है कि एक आलमी नज़म कायम करके आप कम से कम इंसानों के लिए एहतमाम करेंगे कि ये आपस में एक दूसरे को मारने के तराय बता दें।
कोई इकरामा साहब का जो खुतबा इलाहाबाद जिसमें उन्होंने डिफाइन किया था, अगर उसको थॉरली स्टडी किया जाए तो उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था मुस्लिम हिंदुस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, और उसमें उन्होंने प्रिकॉशनरी ब्रिटन्स को ये कहा था कि वो जो रेड रेवोल्यूशन आ रहा है उसको रोकने के लिए हद फासल कायम कर दी जाए। तो इसके पीछे तो दो कमी नज़रिया नहीं है। अगर आप इसको थोड़ी देखें तो
ये जिक्र करूं कि ये जो हिंदू तसव्वुर पैदा हुआ ये कोई एक दिन में पैदा नहीं हो गया था। आपके इलम में है कि खुद कायद अजम मोहम्मद अली जना हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर कहलाते
थे।
नागपुर के इज्तिमा में जब महात्मा न कहने पर हंगामा हुआ उस वक्त असल में दरार पड़ी। अगर आप गौर करें तो वो एक नफ्सियाती मसला था कि जिसमें दो तसव्वुरात बिल्कुल अलग अलग हो गए। आप कायद अजम को देखिए तो उनका पहला एतराज़ महात्मा गांधी पर क्या था कि आप एक सियासी जद्दोजहद को मज़हब का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ये महात्मा गांधी पर कायद अजम का एतराज़ था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के मसले की नौइयत बदलना शुरू हो गई। 14 निकात तक भी सूरत हाल ये थी कि कोई सियासी हल तलाश किया जा रहा था। कैबिनेट मिशन के ज़माने में भी सूरत हाल यही थी, यानी मुस्लिम लीग ने उसको तस्लीम कर लिया था। अच्छा, उसमें बेशुमार फार्मूले पेश किए गए कि हिंदुस्तान के सियासी मसले को कैसे हल किया जाए। सैकड़ों की तादाद में रियासतें अलग थीं, उनके बारे में ये बहस होती रही कि वहाँ के अवाम फैसला करेंगे या महाराजे और नवाब फैसला करेंगे।
तकरीबन 635 के
आपको ताज्जुब होगा कि उसमें कांग्रेस का नुक्ता नज़र ये था कि अवाम को फैसला करने का हक दिया जाए। मुस्लिम लीग का नुक्ता नज़र इसके बरक्स था उसमें, यानी निज़ाम हैदराबाद को फैसला करना है। तो ये सियासी मसाले थे मुसलमानों के जिनमें एक राय कायम की गई, उससे उस वक्त इख्तलाफ भी हुआ इत्तेफाक भी हुआ, उसके नतीजे में एक सियासी हल निकाल लिया गया। इसको आप यहाँ से लेंगे तो कोई मसला पैदा नहीं होगा। इसमें ज़ाहिर है कि अल्लामा इकबाल के ज़माने में ये अभी इतना मुतय्यन नहीं था, तो जो लोग अल्लामा इकबाल के खुतबे से और करारदाद पाकिस्तान से इसको मुतय्यन करने की कोशिश करते हैं वो एक सफ़र है जो जारी रहा। और आखिरी हल फिर जिस पर इत्तेफाक हुआ वो यही था कि नहीं, इसको दो हुकूमतों में तब्दील कर दिया जाए। वो दो हुकूमतों की भी सूरत हाल ये थी कि उसका एक हिस्सा जो था वो एक तरफ पड़ा हुआ था, दूसरा हिस्सा दूसरी जानिब था। अब आप ये देख सकते हैं कि वो बांग्लादेश बन गया, ये मगरबी पाकिस्तान था, ये पाकिस्तान बन गया। तो इसको अगर आप सियासी नुक्ता नज़र से देखें तो आपके जज्बात एहसास और तजिया और होगा। इसको आप मजहबी रंग देंगे तो इससे बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। देखिए, लोग कहते हैं ना कि मैंने अभी एक सवाल उठाया था कि आप 15 अगस्त की सुबह को यहाँ का हिंदू और बुद्ध क्या था, पाकिस्तानी था या हिंदुस्तानी था?
पाकिस्तानी।
तो इस वजह से इस तरह की कश्मकश हमने पैदा कर दी है बहुत से तजादात के साथ। सीधी जगह रहना चाहिए, पाकिस्तान एक कौमी रियासत है, ये सियासी अमल के नतीजे में पैदा हुआ है। हिंदुस्तान के सियासी मसले के दो हल मुमकिन थे, उनमें से एक हल को ताईद हासिल हुई कायद अजम मोहम्मद अली जना की क्यादत में, जो मिसल क्यादत थी। मुसलमानों ने एक फ़ैसला किया, अब ये मुल्क बन गया, ये हमारा मुल्क है। इसके अंदर हुकूमत किसने करनी है? ज़ाहिर है कि अक्सरियत ने, यही जमहूरी उसूल है। यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, इस वजह से उनको पूरा हक है कि इसके कानून को वो इस्लाम के मुताबिक रखें।
तो फिर
यही कायद अजम का मौक़िफ़ था, बहुत सादा बहुत साफ।